नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओ, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
आओ ताली बजा, ताली बजा, आओ ताली बजा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष हमारे उन श्रोता मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में अध्याय 6 से आरंभ करेंगे। आज का विषय है अवस्थानक पवित्रीकरण और व्यवहारात्मक पवित्रीकरण। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि पाप आदम की शिष्टता के द्वारा पाप आया था और पवित्रीकरण मसीह यीशु की शिष्टता के कारण आया। आदम की स्वाभाविक शिष्टता के कारण पाप संपूर्ण मानव जाति में समाया, परंतु मानव जाति का एक और शीर्ष है मसीह यीशु। वह जीवन और धार्मिकता लाता है, वह हम पर से पाप का दोष हटाता है और उस आधार पर वह उन मनुष्यों के जीवन में प्रवेश कर पाता है जो उसमें विश्वास करते हैं और उन्हें धर्मी बनाना आरंभ कर देता है, अर्थात वह उन्हें भला बनाना आरंभ करता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं। आज जब हम आपके वचन को सुनते और सीखते हैं, हमारी विनती है कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों से आप बातचीत करें, उनकी सहायता करें। विशेष करके हमारे उन भाई बहनों के लिए विनती है जो निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमारी अवस्था में हैं, किसी न किसी रूप से अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। प्रभु जी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उनके जीवन से बोले और बातचीत करें ताकि वे इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। हाँ प्रभु, आज के अध्ययन के द्वारा उनके जीवन में आप आनंद दें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अब यहाँ अध्याय 6 में हम उस विषय पर आते हैं जिसे मैंने शीर्षक दिया है, अवस्थानक पवित्रीकरण। पवित्रीकरण के विषय में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। धार्मिकता और पवित्रीकरण में अंतर है, ये दो शब्द बाइबल से ही हैं। मित्रों, मैं और आप इनसे परिचित हो जाएं और इन्हें आरामदेह बना लें। केवल पापों से मुक्ति पाना और परमेश्वर के लिए पृथक होने के कारण जैसे मनुष्य होना है वैसे ही होने में अंतर है। धर्मी ठहराए जाने के लिए मसीह की पहचान में होना हमारे पवित्रीकरण का आधार है। हम मसीह में हैं, ये दो भिन्न विषय हैं, परंतु वे एक दूसरे से अलग भी नहीं हैं। धार्मिकता सब धार्मिकता के प्रवर निर्माणों का आधार है। जी हाँ, अब मैं इसे इस प्रकार प्रस्तुत करता हूँ। धार्मिक ठहराया जाना व्यवहार है और धर्मी ठहराया जाना एक कार्य है। धर्मी ठहराया जाना उसी पल हो जाता है जब आप मसीह में विश्वास कर लेते हैं। आप धर्मी घोषित किए गए, आपका दोष हट गया, तब परमेश्वर ने आप में कार्य करना आरंभ किया जो आजीवन चलता रहेगा। मैं तत्कालीन उद्धार को मानता हूं, परंतु पवित्रीकरण एक जीवन पर्यंत कार्य है। दूसरे शब्दों में धर्मी ठहराया जाना एक साधन है और पवित्रीकरण समापन है। धर्मी ठहराया जाना हमारे लिए है और पवित्रीकरण हमारे भीतर है। धर्मी ठहराया जाना विश्वासी के न्याय में उचित बनाता है। पवित्रीकरण पापी को धर्मी ठहराता है। धर्मी ठहराया जाना पाप का दोष और दंड दूर करता है। पवित्रीकरण पाप का विकास और सामर्थ्य हटाता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर बाहरी और भीतरी दोनों भागों को सुंदर बनाता है। बाहरी सौंदर्यकरण का अर्थ है कि प्रभु ने हमें परमेश्वर के समक्ष खड़ा होने योग्य बनाया है, क्योंकि उसने दंड का भुगतान किया और हम में से पाप का दोष हटा दिया। वह हमें भीतर से भी सुंदर बनाता है। वह हमें आकार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा अंतर्वास करता है कि हमें जैसे विश्वासी होना है वैसा बनाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा उद्धार करके हमें पाप में रहने नहीं देता है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि पवित्रीकरण धर्मी ठहराए जाने से उत्पन्न एक कर्तव्य है या उससे प्रवाहित एक तथ्य है, वरन धर्मी ठहराया जाना और पवित्रीकरण दोनों क्रूसित एवं पुनरुत्थित मसीह में अवस्थित होने से प्रभावित हैं। एक पापी उद्धार और पवित्रीकरण दोनों में विश्वास द्वारा मिलता है। पहला क्रुंथियों के पत्र 1:30 में हमें स्पष्ट किया गया है, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। मेरे मित्रों, 6 तो पौलुस पवित्र जनों के पवित्र जीवन पर चर्चा नहीं करता है और 6 वह पापी के उद्धार की चर्चा नहीं करता। उद्धार पर विचार करते समय वह पवित्र जनों और उनके जीवन की चर्चा नहीं कर रहा था, परंतु अब वह कह रहा है। अतः इस अध्याय का विषय है धर्मी ठहराए गए पापियों को वास्तव में धर्मी ठहराने की परमेश्वर की योग्यता। वह कहता है कि धर्मी ठहराया गया पापी अब आगे से पाप में निर्वाह नहीं कर सकता है, क्योंकि वह मसीह के साथ मर गया और उसके साथ फिर जी उठा है। पाप में बने रहना पाप का दासत्व है। यह पाप में निर्वाह न करने का दूसरा कारण है। विश्वासी का स्वभाव अब एक नया स्वभाव है, उसे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। इस वचन में हमें आज के विचार की विश्वासी जैसा चाहे वैसा करने के लिए स्वतंत्र है। मेरे मित्रों, उससे मुक्ति मिलती है। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में अभिन्न होने का अर्थ है कि वह हमारा प्रभु एवं स्वामी है। वह हमें स्वतंत्रता देता है, परंतु वह अनुमति नहीं है, जैसा हम देखने जा रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अवस्थानक पवित्रीकरण, रोमियो के पत्र 6:1 में लिखा है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? यहाँ पौलुस विवाद करता है। आपको स्मरण होगा कि पाप की चर्चा करते समय वह विवाद नहीं कर रहा था, वरन तथ्यों का उल्लेख कर रहा था, किसी बात को सिद्ध नहीं कर रहा था। वह तो वास्तव में जीवन जो ज्यों का त्यों देख रहा था। उसने कहा कि हम सब पापी हैं। अब वह यह मुहावरे का सा प्रश्न पूछता है जिससे इस अध्याय का आरंभ होता है और विवाद करता है। मूल भाषा यूनानी में प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसका उत्तर एक ही होता है, तो हम क्या कहें? परमेश्वर का अद्भुत उद्धार देखने के बाद आप क्या कहेंगे? मित्रों, हमारा सर्वोत्तम उत्तर है हल्लेलुया। इसके अतिरिक्त आप परमेश्वर के उद्धार के लिए क्या कह सकते हैं? अब पौलुस के विवाद का प्रश्न यह है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? मेरे मित्रों, यह हमारे प्रश्न का उत्तर है जो परमेश्वर देता है। क्या उद्धार पाने के बाद हम पाप में निर्वाह कर सकते हैं, अर्थात पाप में जीवन जी सकते हैं? इसका उत्तर है परमेश्वर न करे, या ऐसा विचार ही न रहे, या कदापि नहीं। कहने का मतलब है कि हमें पाप में जीवन नहीं जीना है। रोमियो के पत्र 6:2 में आगे लिखा है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? मेरे प्रियो, पौलुस द्वारा यह प्रश्न पूछना इस बात का प्रमाण है कि वह धर्मी ठहराए जाने को न्यायोचित होने की घोषणा मानता है। इसका अर्थ मनुष्य का भला होना नहीं, मनुष्य को भला घोषित किया जाना है। धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है उसका दोष या पाप का दंड हट गया, परंतु उसके जीवन में पाप की प्रभुता नहीं गई। अब वह पाप की इस प्रभुता को हटाने के बारे में चर्चा करेगा। यदि परमेश्वर ने आपको न्यायोचित घोषित कर दिया है और आपके पाप का दोष भर्जन कर दिया है, तो मेरे मित्रों, आप पाप में निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर है कदापि नहीं, अर्थात पाप में जीवन आप नहीं जी सकते हैं। हम जब पाप के लिए मर गए, मेरे मित्रों, यह समझ में भ्रम उत्पन्न करती है। हम जब तक इस जीवन में हैं, हम पाप के लिए कभी नहीं मर सकते। इसका शाब्दिक अनुवाद होगा, हम तो पाप के लिए मर गए। तब इस अंतर पर ध्यान दीजिए, इसका अर्थ है हम अपने परिस्थापन मसीह यीशु में पाप के लिए मर गए। हम मसीह में पाप के लिए मर गए, परंतु हम पाप के लिए मृतक नहीं हैं। प्रत्येक सत्यनिष्ठ मनुष्य जानता है कि वह कभी भी इस स्थान पर नहीं आएगा जहां वह मृतक बना रहे। निसंदेह वह उस स्थान पर आ जाता है जहां वह परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, परंतु उसे अपने पुराने पापी स्वभाव का बोध होना अवश्य है। ऐसे ही पदों ने निष्ठावान मनुष्यों को झूठा विश्वास दिलाया है कि वे उस स्थान पर आ गए हैं जहां वे पाप नहीं कर सकते। इन्हें मैं आडंबर ग्रस्त धर्मी जन कहता हूं। मैं आशा करता हूं कि मैं उनके साथ पक्षपात नहीं कर रहा हूं। वे सोचते हैं कि वे सिद्धता की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, अर्थात पार कर चुके हैं। एक बार एक व्यक्ति आराधना के बाद मेरे पास आया और पूछने लगा, क्या आप जयवंत जीवन जी रहे हैं? मेरे विचार में वह स्तब्ध रह गया होगा जब मैंने कहा नहीं। मैंने उससे पूछा, क्या आप जयवंत जीवन जी रहे हैं? वह यहां वहां की बातें करते हुए उत्तर देने से बच रहा था। उसने कहा, वह प्रयासरत है। मैंने कहा, यह प्रश्न का उत्तर नहीं है। आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं जयवंत जीवन जी रहा हूं, और मैंने कहा नहीं। अब आप मुझे हाँ या ना में जवाब दें। उसने आज तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जी हाँ, वह तो मुझे रक्त रहित रोगी लग रहा था। वह विवाह करता रहा। क्या धर्मशास्त्र नहीं कहता कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और पाप के लिए मर गए हैं? मेरे मित्रों, मैंने कहा, नहीं, धर्मशास्त्र यह नहीं कहता। धर्मशास्त्र कहता है कि हम मसीह में पाप के लिए मृतक हैं। यह हमारी स्थिति है, परंतु इस जीवन में हम पाप के लिए मृतक कभी नहीं हैं। आप में पाप का स्वभाव है, मुझ में पाप का स्वभाव है, और जब तक हम इस जीवन में हैं, हम में पाप का स्वभाव बना रहेगा। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? मैंने उसे समझाया, मसीह 2010 वर्ष पूर्व मरा और हम भी उस समय उसके साथ मर गए और उसके साथ जी भी उठे, और अब हम एक जीवित मसीह की एकता में हैं। यह एक महान सत्य है। मेरे मित्रों, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने में सफल नहीं हो पाता हूं। रोचक बात तो यह है कि आप आत्महत्या करने के लिए अनेक विधियां काम में ले सकते हैं, जहर पीकर, गोली मारकर, इमारत से कूदकर, परंतु आप स्वयं को क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते हैं। संभव है कि आप क्रूस पर एक हाथ कील से ठोक दें, परंतु आप दूसरा हाथ क्रूस पर कैसे बांधेंगे? आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। मेरे युवा मित्रों, आप मसीह के साथ 2010 साल पूर्व क्रूस पर चढ़ाए गए थे। उसने आपके पापों को अपने ऊपर में ले लिया है और वह आपको बचाना चाहता है। आपके नशे की आदतों से, बुराइयों से, आपके पाप में जीवन से वह आपको छुटकारा देना चाहता है। रोमियो के पत्र 6 अध्याय के 3 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? मेरे मित्रों, यह भी एक पद है जिसे समझाने में भ्रम उत्पन्न होता है। यदि आप इस पद में कहीं पानी देख रहे हैं तो आप इसका अर्थ नहीं समझेंगे। वर्षों पूर्व डॉक्टर विलियम एल पेटिनगिल एक कलीसिया में बोल रहे थे और किसी ने उससे पूछा, डॉक्टर पेटिनगिल, क्या मैं सही सुना कि आप कह रहे थे कि रोमियो अध्याय 6 में पानी नहीं है? यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह डुबकी के बपतिस्मा के एक कट्टर समर्थक थे। उन्होंने हंसकर कहा, जी नहीं, मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि यदि आप रोमियो की पत्री अध्याय 6 में केवल पानी ही देखेंगे तो आप मुख्य विषय से चूक जाएंगे। उसने कहा, यदि आप इतना दूर जाते हैं तो यह एक अद्भुत बात है, क्योंकि यह वहां निहित एक महान सत्य का अनुमोदन करती है। मेरे मित्रों, पद 3 में बपतिस्मा से पौलुस का क्या अभिप्राय है? मेरे विचार में वह मुख्य रूप से पानी के बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा है। मेरे मित्रों, मुझे आप गलत न समझें, डूब का बपतिस्मा भी सही है, और मेरे विचार में यहाँ दी गई शिक्षा डुबकी के यथोचित वरन सर्वोचित संयोजित होती है, परंतु यहाँ वह मसीह के साथ पहचान बनाने की चर्चा करता है। अनुवादकों ने यूनानी शब्द बैप्टिजो का अनुवाद करने की अपेक्षा उसे ज्यों का त्यों रख दिया, बपतिस्मा। यूनानी भाषा में इसके अनेक अर्थ हैं, लगभग 20 अर्थ हैं। इसका अर्थ बाल रंगना भी हो सकता है, और सच तो यह है कि एशिया माइनर में एक पंथ था जो अपने बाल बैजनी रंग से रंगता था, और उसका नाम बपतिस्मा पंथ था। अतः रोमियों के पत्र 6 अध्याय के 3 पद में पौलुस मसीह के साथ पहचान बनाने की बात कर रहा है। हमने उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया है, अर्थात उसकी मृत्यु के सदृश्य हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है, हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। हम मसीह की मृत्यु के सदृश्य हैं। अगले पद में वह इसे हमें समझाएगा। प्रियो, अब पौलुस कहेगा, हमारे पवित्रीकरण के लिए 3 बातें अति आवश्यक हैं, जिनमें से 2 अवस्थाजनक हैं और 1 व्यवहारात्मक है। आप बाजार से कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो आप उस पर उसे समायोजित करने के निर्देश दिए होते हैं। मसीही जीवन एक ऐसा महत्वपूर्ण जीवन है कि उसके लिए आचरण हेतु नियम है। कुछ बातों का हमें जानना आवश्यक है। हमें यह जानना आवश्यक है कि 2010 वर्ष पूर्व हम यीशु की मृत्यु में उसके सदृश थे। मुझे इसे प्रासंगिक प्रदान करने दीजिएगा, क्योंकि 2010 वर्ष पूर्व वे मुझे यरूशलेम नगर के बाहर ले गए। जब मैं वहां के बारे में सोचता हूं तो मैं इस पर रुक करके दृष्टि करता हूं कि गुलगुता पर मरने वाला का मानसिक दृश्य बनाने का प्रयास किया जाता है। वह तो दोषी नहीं था, दोषी तो मैं था। मुझसे विवाद न करें कि यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़वाया, रोमी क्रूस पर। मित्रों, हम इस विवाद में न पड़े। मेरे पाप और आपके पाप उसके क्रूसीकरण के कारण थे। हमें जो जानना है वह यह है कि हम मसीह यीशु के साथ अभिन्न अंग थे। यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्रों, अब पौलुस इस विचार को विकसित करेगा, जिसे हम रोमियों की पत्री 6 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ेंगे। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। अतः जिस प्रकार मसीह की मृत्यु में अभिन्न अंग थे, उसी प्रकार उसके पुनरुत्थान में भी अभिन्न अंग हैं। आज हम जीवित मसीह यीशु की एकता में हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे पापों का दंड चुकाया जा चुका है, हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। अब हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। हम स्वर्ग में मसीह के साथ बैठे हैं। मेरे मित्रों, हमारे पापों के लिए केवल 2 स्थान हैं। या तो वे मसीह पर हैं, जो 2010 वर्ष पूर्व आपके लिए मर गया क्योंकि आपने उसे मुक्तिदाता ग्रहण किया, या वे आपके ही ऊपर हैं और दंड आपकी प्रतीक्षा में है, और तीसरा कोई स्थान नहीं है। मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मित्रों, यहां पर स्पष्ट कहूं तो मेरा बाल बपतिस्मा हुआ था, परंतु डुबकी का बपतिस्मा सदृश्यता का अधिक उत्तम प्रतीक है। परंतु मेरे विचार में आत्मा का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा एक संस्कार है, परंतु डूब की आत्मिक तथ्य का अधिक उचित प्रकटीकरण है। यही कारण है कि परमेश्वर की संतान को पानी में बपतिस्मा लेना आज उचित है। यह उसकी गवाही है कि वह मसीह की अभिन्नता में आ गया है और यह अति महत्वपूर्ण भी है। पहला पत्रस के पत्र 3 अध्याय उसके 21 पद में पत्रस के कहने का अर्थ क्या है? बपतिस्मा मसीह यीशु के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। मेरे प्रियो, यह हमें कैसे बचाता है? पिछले पद में वह नूह की नाव में 8 आत्माओं के बचाए जाने के बारे में चर्चा करता है। वे दंड के जल प्रलय में नाव में सवार थे। नाव के बाहर की जनता पानी में डूबकर मर गई, परंतु नाव में सवार 8 मनुष्यों पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। परंतु पत्रस कहता है कि वे बपतिस्मे के द्वारा बचाए गए थे। अतः इस घटना में स्पष्ट है कि बपतिस्मे का पानी से कोई संबंध नहीं है, अपेक्षा इसके यह एक सादृश्यता है। वे नाव के तंद्रुपता में थे और उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करके नाव में प्रवेश किया और परमेश्वर ने यह निश्चित किया कि वह नाव पानी के ऊपर तैरती रहे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझे नहीं मसीह यीशु को देखता है, क्योंकि मैं अब मैं नहीं परंतु मसीह में हूँ। वह मेरी नाव है। मसीह मृत्यु के पानी में गया और हम मसीह में हैं। जी हाँ, हम उसके साथ उठाए भी गए। हम उसके साथ एकता में हैं। यह महत्वपूर्ण है, इससे चूक ना जाएं। यदि आप चूक गए तो मसीह जीवन के महान सत्यों में से एक से आप चूक जाएंगे। हम रोमियों के पत्र 6 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यदि हम मसीह की मृत्यु की समानता में रोपित किए गए हैं तो हम उसके पुनरुत्थान की एकता में भी वृद्धिमान होते हुए रोपित अर्थात गंभीरता से जुड़े हुए हैं। हम मसीह के जीवन के भागी हैं। जैसे एक शाखा पेड़ के जीवन में भागी होती है, वैसे ही अब हम मसीह के जीवन में भागी हैं, अर्थात हमारा जीवन मसीह में है। रोमियों के पत्र 6 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। ध्यान दें, हम जानते हैं, ये वे बातें हैं जिन्हें हम जानते हैं। और पौलुस कहता है, हमारा पुराना मनुष्यत्व अर्थात हमारा पुराना मानवीय स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। व्यर्थ होने का अर्थ है कि उसका प्रभाव जाता रहे। पाशाघात अर्थात निराकरण, हम आगे के पाप के दासत्व में न रहें। पौलुस यह नहीं कहता कि पुराने स्वभाव का उन्मूलन हो गया है। वह कहता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, इसलिए पाप की देह निष्क्रिय हो गई है, अतः अब हम पाप के दासत्व में नहीं रहेंगे। रोमे के पत्र 6 अध्याय उसके 7 पद में हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। जी हाँ, क्योंकि जो मर गया वह पापों से न्यायोचित ठहराया गया है, उसको दोष मुक्ति प्राप्त हो गई है, यह उसकी स्थिति है। रोमियों के पत्र 6 अध्याय उसके 8 पद में आगे हम पढ़ते हैं, सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम मसीह के साथ मर गए तो यह हमारा विश्वास है कि हम यहां भी और मरने के बाद भी उसके साथ रहेंगे। हम आज उसके पुनरुत्थान के जीवन के भागी हैं और एक दिन मृतकों में से जी उठेंगे। रोमियों के पत्र 6 अध्याय के 9 पद में लिखा है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। लिखा है जानते हैं। मेरे मित्रों, हमें यह भी जानना है फिर मरने का नहीं। यह आगंतुक स्तुति गान है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 18 पद में वह कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। पुनरुत्थान मसीह के लिए अनंत काल का द्वार खोल देता है और उसके विश्वासियों के लिए भी अनंत जीवन खुला है। रोमियों के पत्र 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। एक दिन वह मर गया था, परंतु आज वह जीवित है और उसके अपनों के लिए प्रार्थना करने को सदा उपस्थित है। इस कारण वह आपको परिपूर्ण मोक्ष प्रदान करता है। अब हम विश्वासियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। रोमियों के पत्र 6:11 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। समझो का अर्थ अनुमान लगाने से नहीं है। हमें उस तथ्य को ग्रहण करना है कि हम पाप के लिए मृतक और परमेश्वर के लिए जीवित हैं। हमें मन मस्तिष्क में बसा लेना है कि हमारा पुराना स्वभाव यूसुफ की कब्र में 2010 वर्ष पूर्व से दफन है। जब मसीह मृतकों में से जी उठा, तब हम उसमें उपस्थित होने के कारण मृतकों में से जी उठे हैं। हमें इसे अंतर्ग्रहण कर लेना है। रोमियों के पत्र 6:12 में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। मेरे मित्रों, यहाँ पर बताया गया है कि हमें उनकी लालसाओं के अधीन नहीं रहना है, अर्थात पाप को अपने देह पर राज्य न करने दो कि आपको देह की अभिलाषाएं पूरी करनी पड़े। मेरे प्रिय मित्रों, यह निश्चित ही हम सब के लिए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम मसीह में उसके पापों में मर गए हैं, तो अब हम मसीह में जी भी उठे हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम उन पाप की अभिलाषाओं में ना पड़ें। मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार से है। क्या आप मसीह जीवन जी रहे हैं या आप उसी पुराने स्वभाव में जी रहे हैं जो पाप का स्वभाव है? आज परमेश्वर चाहता है कि आप उससे छुटकारा पाएं। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने पाप और पुनरुत्थान और उसके जीवन के बारे में इन बातों को अवश्य ही अपने जीवन में ग्रहण किया है और मुझे विश्वास है कि आप इसके अनुसार अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंपेंगे। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे एवं सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
उस पर जिसका भरोसा।